9. सूफी सिद्धांत। सूफी मत के विकास की चर्चा करते समय हमने यह देखा है कि किस प्रकार से कुरान में वर्णित परमात्मा के स्वरूप को स्वीकार करते हुए सूफी संन्यास जीवन बिताते थे और किस प्रकार से धीरे धीरे उनमें रहस्यवादी प्रवृत्ति और तत्व चिंतन का प्रवेश हुआ। हम यह भी देख चुके हैं कि बाद में चलकर कितने तत्व चिंतकों और दार्शनिकों ने सूफी सिद्धांतों की विवेचना की और सूफी दर्शन को एक रूप दिया। उन तत्व चिंतकों ने परमात्मा, आत्मा, सृष्टि तत्व आदि सभी का विवेचन किया और अपने मत का निरूपण किया। अतएव हम यहाँ पर उन मतों की चर्चा करना चाहेंगे जिससे हम यह समझ सकें कि सूफी मत में परमात्मा का स्वरूप क्या है, सृष्टि क्या है तथा उसका प्रयोजन क्या है, सूफियों का चरम लक्ष्य क्या है आदि। हमें स्पष्ट रूप से प्रारंभ में ही यह जान लेना चाहिए कि उपर्युक्त प्रश्नों को लेकर सूफियों के बीच नाना प्रकार के मत प्रचलित हैं, फिर भी कुछ ऐसे आधारभूत सिद्धांत हैं जिन्हें प्रायः सभी संप्रदाय स्वीकार करते हैं। इन दार्शनिक तत्वों के विवेचन में भिन्न भिन्न मतों का होना कुछ अस्वाभाविक नहीं है। संसार के विभिन्न धर्मों में इस तरह के मत मतांतर देखे जाते हैं। सूफी साधकों ने इन प्रश्नों पर विचार किया है और विचार करते समय प्रमुख रूप से उनकी रहस्यवादी प्रवृत्ति उन्हें प्रभावित करती रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने सनातन पंथी इस्लाम के सिद्धांतों को भी अपनी दृष्टि में रखा है। अपने सिद्धांतों और मतों के औचित्य को कुरान के वचनों तथा हदीसों से वे सिद्ध करते रहे हैं और जहाँ पर उन्हें इसमें कठिनाई का अनुभव हुआ उन्होंने कुरान की व्याख्या अपने ढंग से की। कुरान की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जा सकती है। अपने मत की पुष्टि के लिए पृष्ठ संख्या 248। अपने मन से हदीसों की सृष्टि करने में भी वे नहीं चूके। अतएव यहाँ पर परमात्मा, आत्मा तथा सृष्टि संबंधी सनातन पंथी इस्लाम के दृष्टिकोण को जान लेना आवश्यक है। सनातन पंथी इस्लाम के अनुसार परमात्मा एक है और उसके जैसा दूसरा कोई नहीं। काल और स्थान की परिधि में वह नहीं बांधा जा सकता। वह अपने आप में पूर्ण है, उसे किसी की अपेक्षा नहीं। उसके जात और सिफत अपरिवर्तनशील हैं। वह सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ का जानने वाला है, वह क्षमाशील है। उससे बाहर न किसी प्रकार का ज्ञान है और न किसी प्रकार की सत्ता। जो कुछ भी हम देखते हैं और जिस किसी भी वस्तु का अस्तित्व है वह उसी के ऊपर निर्भर करता है। वह सर्वज्ञ है, मनुष्य के ज्ञान की सीमा के बाहर है। उसके ज्ञान, कर्म और स्वभाव मनुष्य के ज्ञान, कर्म और स्वभाव से भिन्न है। उसका देखना सुनना हमारे जैसा नहीं है। उसके न्याय में कोई दखल नहीं दे सकता। उसका न्याय उसी का न्याय है। सृष्टिकर्ता वही है। अच्छे या बुरे का बनाने वाला वही है। वह अवतार नहीं लेता। उसकी सृष्टि तथा उसके बीच और कोई नहीं है। कुछ लोग परमात्मा के पैगंबर अवश्य हैं। उनका काम उसके आदेशों को मनुष्य तक पहुंचाना है। परमात्मा और मनुष्य के बीच के व्यवधान पर कुरान में अत्यधिक जोर दिया गया है। उसकी बनाई हुई सृष्टि और उसके कार्यों को देखकर ही मनुष्य उसके रहस्यों को समझने में समर्थ हो सकता है। जो लोग उसे समझना चाहते हैं, जो उसे जानना चाहते हैं, वे प्रकृति के विभिन्न व्यापारों को देखकर उसे जान सकते हैं। कुरान में कहा गया है, सूरा 2:164, आसमान और पृथ्वी के निर्मित होने में, रात दिन के परिवर्तन में, समुद्र में, मनुष्य के लिए उपयोगी सामग्री ढोने वाले जहाजों में, आसमान से पड़ने वाली वृष्टि में जिसे परमात्मा धरती पर भेजता है जिससे मृत पृथ्वी में प्राण का संचार, सूरा 16:65, तथा विभिन्न प्रकार के पशुओं का अस्तित्व संभव हो पाता है, पृष्ठ संख्या 249। उसी प्रकार से हवा के नियंत्रण में तथा आसमान और जमीन पर उपयोगी कार्य संपादन करने वाले बादलों में खोजने वाले उसका पता पा सकते हैं। पहाड़ों और पेड़ों पर रहने वाली मधुमक्खियां, सूरा 16:68, खजूर और अंगूर, सूरा 16:67, हवा में उड़ने वाले पक्षी, 16:79, सभी उसका पता देते हैं। वह परमात्मा आकाश और पृथ्वी की ज्योति है। आले में रखे हुए दीपक की नाई उसका प्रकाश है। वह दीपक एक शीशे के भीतर है और वह शीशा मानो एक चमकता हुआ सितारा है। परमात्मा जिसे चाहता है अपनी ज्योति की ओर अग्रसर करता है। अल्लाह सब कुछ का जानने वाला है और मनुष्यों से वह रूपकों की भाषा में बोलता है, सूरा 24:35। परमात्मा ने कृपा पूर्वक ऐसे घर निर्मित होने दिए हैं जहाँ वह दीपक पाया जाता है। वहाँ मनुष्य सुबह शाम गुणानुवाद करे, उसे स्मरण करे। धन की लिप्सा ऐसे मनुष्यों को परमात्मा की याद तथा जकात से इधर उधर भटकाने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि उसे उस दिन का भय बना रहता है जिस दिन हृदय धड़कते रहेंगे और आंखों की पुतलियां उल्टी हुई रहेंगी। सूरा 24:36-37। और परमात्मा उनके भले कर्मों के लिए अच्छा फल देगा और उसकी कृपा से उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी, क्योंकि परमात्मा जिससे खुश होगा उसके लिए सारी व्यवस्था करेगा। और जो अविश्वासी हैं उनके किए हुए कर्म मानो मरुभूमि की मृग तृष्णा जैसे हैं, जिसकी ओर प्यासा पानी समझकर बढ़ता है और पास आने पर पाता है कि वह कुछ नहीं है और वह वहाँ परमात्मा को पाता है जो उसके किए हुए का फल देता है, क्योंकि लेखा जोखा लेने में उसे देर नहीं लगती। सूरा 24:38-39। क्या तुमने नहीं देखा है कि समस्त पृथ्वी और आकाश उसका गुणगान करते हैं तथा पंख पसारते ही पक्षी उसका गुणानुवाद करने लगते हैं? परमात्मा प्रत्येक की प्रार्थना और गुणानुवाद को जानता है। अल्लाह को पता है कि वे क्या करते हैं। आसमान और जमीन का साम्राज्य परमात्मा का है और परमात्मा में ही पृष्ठ संख्या 250 लौटना है। सूरा 24:41-42। अतएव हम देखते हैं कि कुरान का अल्लाह समस्त संसार के ऊपर दृष्टि रखता है और लोगों के किए हुए भले और बुरे कर्मों से परिचित रहता है। वह अपने न्यायासन पर बैठकर बुरे कर्म करने वालों को दंड देता है तथा शुभ कर्म करने वालों की रक्षा करता है और उन्हें पुरस्कृत करता है। उसका दूसरा रूप भी हमारे सामने आता है। वह अल हक सत्य है, शाश्वत है और अविनश्वर है तथा आकाश पृथ्वी का आलोक है, जबकि अन्य वस्तुएं क्षणस्थायी हैं और नश्वर हैं। वह अपने जैसा आप है और निर्व्यक्तिक है। सनातन पंथी इस्लाम के अनुसार मनुष्य और अल्लाह के बीच का संबंध निरंकुश स्वामी और दास का है। पृष्ठ 87। परमात्मा, आत्मा, सृष्टि आदि के संबंध में सूफियों ने काफ़ी छानबीन की है, लेकिन उनमें दो मुख्य वर्ग हो गए हैं जो कम या बेशी अधिकांश सूफी संप्रदाय के मतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें एक वर्ग वहदतुल वजूद के सिद्धांत को मानता है और दूसरा वर्ग वहदतुश शुहूद के सिद्धांत को ग्रहण करता है। इनकी चर्चा करने के पहले हम यहाँ पर परमात्मा संबंधी कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहेंगे जो प्रायः सभी सूफी संप्रदायों में स्वीकार की जाती हैं। परमात्मा के संबंध में सूफी भी सनातन पंथी मुसलमानों के जैसा एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने ढंग से इसको मानते हैं। सनातन पंथी इस्लाम के अनुसार परमात्मा अपने जैसा आप है, उनके जैसा और कुछ भी नहीं। जात, सत्ता, सिफत, गुण और कर्म में परमात्मा अद्वितीय है। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सृष्टि के सभी पदार्थों से वह भिन्न है, लेकिन सूफियों के लिए एकेश्वरवाद का अर्थ दूसरा है। यह मानते हुए भी कि परमात्मा एक और अद्वितीय तथा निरपेक्ष है, सूफी यह कहते हैं कि उस दृश्यमान जगत में परिव्याप्त एकमात्र वही सत्य है, उसी की एकमात्र सत्ता है जो पहले थी या भविष्य में पृष्ठ संख्या 251 रहेगी। अतएव ऐसा मानने का यह मतलब हो जाता है कि अगर परमात्मा को छोड़कर और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है तो यह निखिल विश्व परमात्मा के साथ एक है तथा प्रतीयमान जितनी भी सत्ताएं हैं वे उसी में अंतर्निहित हैं। जामी ने एक जगह कहा है, मी 81:82। अतएव हम देखते हैं कि कुरान का अल्लाह समस्त संसार के ऊपर दृष्टि रखता है और लोगों के किए हुए भले और बुरे कर्मों से परिचित रहता है। वह अपने न्यायासन पर बैठकर बुरे कर्म करने वालों को दंड देता है तथा शुभ कर्म करने वालों की रक्षा करता है और उन्हें पुरस्कृत करता है। उसका दूसरा रूप भी हमारे सामने आता है। वह अल हक सत्य है, शाश्वत है और अविनश्वर है तथा आकाश पृथ्वी का आलोक है, जबकि अन्य वस्तुएं क्षणस्थायी हैं और नश्वर हैं। वह अपने जैसा आप है और निर्व्यक्तिक है। सनातन पंथी इस्लाम के अनुसार मनुष्य और अल्लाह के बीच का संबंध निरंकुश स्वामी और दास का है। पृष्ठ 87। परमात्मा, आत्मा, सृष्टि आदि के संबंध में सूफियों ने काफ़ी छानबीन की है, लेकिन उनमें दो मुख्य वर्ग हो गए हैं जो कम या बेशी अधिकांश सूफी संप्रदाय के मतों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें एक वर्ग वहदतुल वजूद के सिद्धांत को मानता है और दूसरा वर्ग वहदतुशुहूद के सिद्धांत को ग्रहण करता है। इनकी चर्चा करने के पहले हम यहाँ पर परमात्मा संबंधी कुछ बातों पर प्रकाश डालना चाहेंगे जो प्रायः सभी सूफी संप्रदायों में स्वीकार की जाती हैं। परमात्मा के संबंध में सूफी भी सनातन पंथी मुसलमानों के जैसा एकेश्वरवाद में विश्वास करते हैं, लेकिन दोनों अपने अपने ढंग से इसको मानते हैं। सनातन पंथी इस्लाम के अनुसार परमात्मा अपने जैसा आप है, उसके जैसा और कुछ भी नहीं। जात, सत्ता, सिफत, गुण और कर्म में परमात्मा अद्वितीय है, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। सृष्टि के सभी पदार्थों से वह भिन्न है, लेकिन सूफियों के लिए एकेश्वरवाद का अर्थ दूसरा है। यह मानते हुए भी कि परमात्मा एक और अद्वितीय तथा निरपेक्ष है, सूफी यह कहते हैं कि इस दृश्यमान जगत में परिव्याप्त एकमात्र वही सत्य है, उसी की एकमात्र सत्ता है जो पहले थी या भविष्य में रहेगी। पृष्ठ संख्या 251। अतएव ऐसा मानने का यह मतलब हो जाता है कि अगर परमात्मा को छोड़कर और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, तो यह निखिल विश्व परमात्मा के साथ एक है, तथा प्रतीयमान जितनी भी सत्ताएं हैं वे उसी में अंतर्निहित हैं। जामी ने एक जगह कहा है, मी ई पृष्ठ 81-82, वह अद्वितीय पदार्थ जो निरपेक्ष है, अगोचर है, अपरिमित है और जो नानात्व से परे है, वही अलहक परम सत्य है। दूसरी तरफ अपने नानात्व और अनेकत्व में जब वह सभी गोचर वस्तुओं में अपने आप को प्रकट करता है, तब यह संपूर्ण रची हुई सृष्टि वही है। अतएव यह सृष्टि उस परम सत्य की दृश्यमान बाह्य अभिव्यक्ति है, और वह परम सत्य सृष्टि का अभ्यंतर अदृश्य सत्य है। यह सृष्टि गोचर होने के पहले उसी परम सत्य के सदृश थी, और गोचर होने के बाद उस परम सत्य इस सृष्टि के साथ सादृश्य है। वह परम सत्य के अलावा परम कल्याण शिव है, और चूंकि वह परम कल्याण है, इसलिए वह परम सौंदर्य है। सौंदर्य कल्याण का ही एक रूप है। संपूर्ण सृष्टि उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियां सूर्य से निकलती हैं, फिर भी सूर्य ज्यों का त्यों बना रहता है, उसी प्रकार परमात्मा और सृष्टि का संबंध है, और उससे परमात्मा का एकत्व खर्वित नहीं होता। यह इंद्रिय गोचर जगत अग्नि के गोलाकार चक्कर की तरह है, जो एक ही अग्नि स्फुलिंग के चारों ओर जोर से घुमाने से बनता है। कितने ऐसे भी सूफी हैं जो कहते हैं कि सृष्टि दर्पण के समान है, जिसमें परमात्मा के गुण प्रतिबिंबित होते हैं। जामी की एक कविता में कहा गया है, ली ही प पृष्ठ 441, तुम परम सत्ता हो और सभी कुछ मरीचिका मात्र है, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि में सभी वस्तुएं एक हैं। संपूर्ण सृष्टि को मुग्ध करने वाला तुम्हारा सौंदर्य अपनी पूर्णता को प्रकाशित करने के लिए हजारों दर्पणों में प्रतिभासित होता है, लेकिन वह सौंदर्य एक ही है। पृष्ठ संख्या 252। इस प्रकार से सूफियों के सिद्धांत के मानने का मतलब यह हो जाता है कि अगर परमात्मा को छोड़कर और किसी वस्तु की सत्ता नहीं है, तो यह निखिल विश्व परमात्मा के साथ एक है, और निखिल विश्व के साथ मनुष्य भी परमात्मा के साथ एक है। चाहे सूर्य की रश्मि से उस मनुष्य की तुलना कर लें, अथवा परमात्मा के गुणों को प्रतिबिंबित करने वाला उसे दर्पण मान लें, तब स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि जब परमात्मा ही सब कुछ है, तब उसे अपने को प्रकट करने की जरूरत क्यों पड़ी, तथा वह एक अनेक कैसे हो गया। हम यह देख चुके हैं कि परमात्मा निरपेक्ष और अनंत है, तथा यह सृष्टि नाशवान और क्षणभंगुर है। लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि परमात्मा अकेला रहा होगा और उसका सौंदर्य और ऐश्वर्य आलोकित हो रहा होगा। उस समय उस सौंदर्य को देखकर मत्त होने वाला कोई दूसरा नहीं रहा होगा। उस परम सौंदर्य का उपभोग करने वाला अन्य कोई नहीं रहा होगा। उस सौंदर्य और उस विभूति को देखकर आत्मविभोर होने वाला कोई नहीं रहा होगा। उस समय उस परम सौंदर्य को अपने आप को प्रकाशित करने की इच्छा हुई होगी। सौंदर्य अपने आप को प्रकट करने की इच्छा लिए हुए रहता है, वह अपने आप को बिना प्रकट किए हुए नहीं रह पाता। अपने आप को प्रकट करने की यह बेचैनी नाना रूपों में नाना प्रकार से प्रकाश पाती है। अतएव उस अनंत सौंदर्य और अनंत विभूति को आत्म प्रकाश करने की जब अभिलाषा उत्पन्न हुई, तब इस दृश्यमान जगत का आविर्भाव हुआ। यह जगत उस सौंदर्य को अंशतः प्रकट करने वाला है। इसके समर्थन में एक हदीस का हवाला दिया जाता है, कुंतो कंजन मखफियन फाह बबतो अन ओरिफो फखल खतुल खल्क, अर्थात मैं एक छिपा हुआ खजाना था, फिर मैंने इच्छा की कि लोग मुझे जाने, इसलिए मैंने सृष्टि की रचना की। सूफी इसे ही सृष्टि का कारण मानते हैं। उस निरपेक्ष परम सत्ता को, जो परम सौंदर्य और परम कल्याण भी है, अपने को प्रकट करने के लिए इस असत क्षण भंगुर जगत की सृष्टि करनी पड़ी। पृष्ठ संख्या 253। विरोधी तत्वों की वर्तमानता से उन तत्वों का परिचय सहज हो जाता है। अंधकार का ज्ञान होना प्रकाश का ज्ञान कराता है। अतएव उस परम सत्ता का ज्ञान इस असत सृष्टि के द्वारा होना संभव है। यह सृष्टि जिसकी वास्तविक सत्ता नहीं है, उस परमात्मा को जो परम सत्ता है, समझने में सहायक सिद्ध होती है। मंगल का ज्ञान अमंगल के द्वारा, सुंदर का ज्ञान असुंदर के द्वारा, अच्छाई का ज्ञान बुराई के द्वारा सहज प्राप्य है। उस परम सत्ता, परम सौंदर्य और परम कल्याण का ज्ञान इस सृष्टि से संभव हो पाता है। लेकिन इसका एक दूसरा भी पहलू है, और वह यह कि यह संसार नाशवान है और सचमुच की इसकी सत्ता नहीं है, तथा जिसे हम बुराई, पाप और अमंगल तथा असुंदर समझते हैं, वह वास्तव में भ्रम है। कारण जिस प्रकार से परम सौंदर्य और परम कल्याण की वास्तविकता है, उस प्रकार से इनकी नहीं है। ये नकारात्मक हैं, वस्तुतः ये है नहीं। यह दृश्यमान जगत जो अवास्तविक है, असत के दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला उस परम सत्ता का प्रतिबिंब है। इसको और स्पष्ट रूप से यूं समझा जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश जल में पड़ता है, और जल में उसके पड़ने वाले प्रतिबिंब से हम सूर्य को देख सकते हैं। यह प्रतिबिंब वास्तव में सूर्य के कारण ही है। अगर सूर्य नहीं है तो वह प्रतिबिंब भी नहीं है। उस प्रतिबिंब को अपने अस्तित्व के लिए सूर्य पर निर्भर करना पड़ता है, लेकिन सूर्य का अस्तित्व प्रतिबिंब के कारण नहीं है। यह प्रतिबिंब हजारों बार बन बिगड़ सकता है, उससे सूर्य का कुछ आता जाता नहीं। सूर्य ज्यों का त्यों बना रहता है। उस प्रतिबिंब के बनने बिगड़ने से उसमें कोई कमी बेशी नहीं होती। जल इस प्रकार से सूर्य के दर्पण की तरह है जो सूर्य को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ स्पष्ट रूप से तीन चीजें हैं, एक तो सूर्य है और दूसरा जल है जो सूर्य को प्रतिबिंबित करने वाला है, और तीसरा प्रतिबिंब है। सूर्य की नाई वह परम सत्ता है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। उसे प्रतिबिंबित करने वाला जल की नाई असत है, जो सत्ता का नकारात्मक रूप है, और सूर्य के प्रतिबिंब की नाई यह दृश्यमान जगत है जो परमात्मा का पृष्ठ संख्या 254 प्रतिबिंब है। यह दृश्यमान जगत परमात्मा की सत्ता पर ही निर्भर करता है, इसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। इस दृश्यमान जगत और मनुष्य के संबंध में सूफियों का कहना है कि असत के दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाली परमात्मा की प्रतिच्छवि जैसा यह दृश्यमान जगत है, और मनुष्य उस प्रतिच्छवि की आँख जैसा है। परमात्मा अपनी प्रतिच्छवि में प्रकट होता है तथा मनुष्य में भी अपने आप को प्रकट करता है। इस प्रकार से एक तो यह सृष्टि है जो परमात्मा की प्रतिच्छवि है, दूसरे जिस प्रकार से आँख की पुतली में संपूर्ण प्रतिच्छवि उतर आती है, उसी प्रकार से मनुष्य जो उस प्रतिच्छवि की आँख जैसा है, उस परमात्मा को और उसकी प्रतिच्छवि को अपने आप में बसाए हुए है। अतएव एक ओर तो परमात्मा अपनी प्रतिच्छवि अर्थात दृश्यमान जगत में अपने आप को प्रकट करता है, और दूसरी ओर मनुष्य में भी जो परमात्मा की प्रतिच्छवि आँख जैसा है। अब हम देखते हैं कि मनुष्य एक ओर तो इस सृष्टि का अंग है, और दूसरी ओर परमात्मा भी अपने भीतर ग्रहण किए हुए है। अतएव उसमें दोनों चीज हम पाते हैं, उसमें सत और असत दोनों विद्यमान है। परमात्मा के अंग स्वरूप उसमें शाश्वत सत्ता का भी अस्तित्व है, और क्षणभंगुर सृष्टि का अंग होने से असत का भी अस्तित्व है। इस सृष्टि में वह विशिष्ट स्थान रखता है, उसमें अच्छाई भी है बुराई भी। इस मनुष्य में जो कुछ भी अच्छाई है, जो कुछ भी सत्य है, वह परमात्मा का है। उसके अलावा इन तत्वों के विपरीत अन्य कोई वस्तु जो उसमें है, वह असत्य है, क्षणभंगुर है, और कल्याण तथा मंगल के नकारात्मक रूप में उसमें विद्यमान है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमात्मा ही एकमात्र सत्ता है। इस सिद्धांत को मानने के फलस्वरूप सूफी यह भी मानने लगे कि वह संसार के सब पदार्थों में विद्यमान है। उनके अनुसार सभी दृश्य या अदृश्य वस्तुओं का उद्गम वही है, और उससे उनकी अलग सत्ता नहीं है। अच्छे या बुरे में कोई अंतर नहीं, क्योंकि सबका पर्यवसान उसी एक में होता है। पृष्ठ संख्या 255। और मनुष्यों के कर्मों का विधायक वही है। मनुष्य में इच्छा शक्ति का प्रेरक वही है, अतएव मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म में स्वतंत्र नहीं है। उस परम ज्योति की एक रश्मि की तरह वह है। मनुष्य के भीतर जो ईश्वरीय अंश है, और जो उस विशुद्ध सत्ता की एक चिंगारी जैसा है, वह जाने या अनजाने इस बात की सतत चेष्टा में लगा रहता है कि वह अपने उसी उद्गम स्थल पर लौट कर उसके साथ एक हो जाए। लेकिन जब तक उसका यह असत तत्व शरीर बना रहता है, वह इसमें कृत कार्य नहीं होता। ही ओपो खंड 1 पृष्ठ 20। इस शरीर से पूर्व जो आत्मा की सत्ता थी, वह मानो इसमें कैद की हुई है। इसलिए सूफी साधक मृत्यु का स्वागत करते हैं। उनका कहना है कि मृत्यु के द्वारा वे परमात्मा के पास फिर पहुंच सकते हैं, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि परमात्मा की कृपा हुए बिना परमात्मा के साथ मिलन संभव नहीं। अतएव साधक की सबसे बड़ी साधना यह होती है कि वह अपने इस असत तत्व तथा सत्य प्रतीत होने वाले अहम के ऊपर विजय प्राप्त करे। इस अहम सबसे अधिक भ्रम में डालने वाला है और सब दुखों का मूल है। अतएव इस पर विजय प्राप्त करना है और इसके लिए इस ज्ञान की उपलब्धि आवश्यक है कि सचमुच में परमात्मा के सिवा जो कुछ है वह नाशवान है, भ्रम है, असत है और कल्याण का नकारात्मक स्वरूप है। उसे ही सत्य समझ लेना और इसे भ्रम में अपने को भुलाए रखना दुख का कारण है। इसीलिए सूफी साधकों का कहना है कि इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए तथा परमात्मा की कृपा दृष्टि के लिए साधक को निरंतर परमात्मा से दुआ मांगते रहना चाहिए। सूफी का एक मुख्य कर्तव्य उनकी दृष्टि में यह है कि वह वहदानिया परमात्मा के एकत्व का ध्यान, जिक्र, परमात्मा का स्मरण और तरीका सूफी मार्ग पर अग्रसर होने में लगा रहे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा अंत में परमात्मा के साथ एकमेक होना संभव है। ही ई पृष्ठ 609 पृष्ठ संख्या 256। परमात्मा संबंधी प्रमुख सिद्धांतों में वहदतुल वजूद है। इस सिद्धांत का विशिष्ट स्थान रहा है। इस सिद्धांत ने संपूर्ण सूफी चिंताधारा को प्रभावित किया है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक मोहियुद्दीन इब्नुल अरबी थे। इनका जन्म स्पेन में हुआ था और ये बहुत बड़े सूफी साधकों तथा विचारकों में थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक अनुभवों के आधार पर इस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की थी और कुरान तथा हदीसों के सहारे इसकी संगति इस्लाम के साथ बैठाई थी। यही कारण था कि इस सिद्धांत का प्रभाव इस्लामी दुनिया और विशेष रूप से विभिन्न सूफी संप्रदायों पर व्यापक रहा। इसके बाद का कोई भी सिद्धांत इससे अछूता नहीं रहा। अंत में इब्नुल अरबी दमिश्क में बस गए, जहां उनकी मृत्यु सन 1240 ईस्वी के लगभग हुई। जहां भी वे गए उन्होंने काफी भ्रमण किया था, उनका सम्मान लोगों ने किया। वे शेख अकबर सबसे बड़ा शेख कहे जाते हैं और इसी से उनके महत्व का पता चलता है। वहदतुल वजूद के अनुसार वास्तविक सत्ता एक है। उस सत्ता के सिवा अन्य किसी सत्ता का अस्तित्व नहीं और वह एकमात्र सत्ता परमात्मा है। यह संपूर्ण दृश्यमान जगत उसी परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। अतएव परमात्मा और जगत में साम्य है। यह समानता जात और सिफत की है। यह संसार उसके सिफत गुणों की तजल्ली अभिव्यक्ति मात्र है। मुंह क तो पृष्ठ 58। इस प्रकार से इब्नुल अरबी के मतानुसार परमात्मा ही एकमात्र सत्ता है और अन्य सभी पदार्थ उसकी अभिव्यक्ति मात्र। हमावूस्त अर्थात सब कुछ वही है का सिद्धांत इसी पर आधारित है। इसके अनुसार संपूर्ण सृष्टि का एक ही उद्गम है और उसी में वह लय हो जाती है। इसको स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि परमात्मा की सत्ता ही अपनी अभिव्यक्ति में जादूगर के रुपए की नई सृष्टि की सत्ता हो जाती है। इब्नुल अरबी का कहना मी ई पृष्ठ 155 है कि शाश्वत और दृश्यमान वस्तुएं ये दोनों पृष्ठ संख्या 257 एक के ही पूरक जैसे हैं और उनमें परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। जीव सृष्टिकर्ता की बाह्य अभिव्यक्ति है। मनुष्य परमात्मा का चेतन अंश सिर है जो इस सृष्टि में प्रकट दीख पड़ता है। और चूंकि मनुष्य की ज्ञान परिधि सीमित है, इसलिए सभी वस्तुएं एक ही साथ उसके चिंतन क्षेत्र में नहीं आ पाती। अतः वह उस चैतन्य के एक अंश को ही प्रकट कर सकता है। वह सत्य तो है, लेकिन वही एकमात्र सत्य नहीं है। परमात्मा और दृश्यमान जगत की अनुरूपता को एक स्थायी अनुभव के रूप में वह नहीं स्वीकार करता। उसका कहना है कि उस वास्तविक सत्ता को कोई परमेश्वर कह ले, चाहे उसे जगत कह ले, अथवा दोनों के अंतर दिखाने में अपनी असमर्थता प्रकट कर ले, लेकिन वह है एक ही। वह परमात्मा को सर्वगत अथवा सर्वातीत भी कहने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वैसा कहने का अर्थ उसकी दृष्टि में द्वैत भावना का आरोप है। उसका कहना है कि दोनों में कुछ भी कहने से उसकी असीमता खर्वित होती है। अतः उसके एकत्व को दोनों में प्रकट किया जाना चाहिए। अल्लाह ही असल है और संसार उसका जिल छाया है, और छाया तो वास्तविकी ही अभिव्यक्ति है, इसलिए संसार उसके अनुरूप है। पृष्ठ 8। इब्नुल अरबी के परमात्मा संबंधी सिद्धांत को विश्वात्मवाद समझ लिया जाता है, लेकिन ऐसा समझना ठीक नहीं, क्योंकि उसका सिद्धांत कुछ इस प्रकार से है। मनुष्य अथवा यह संसार परमात्मा के मस्तिष्क से उत्पन्न हुआ है। मनुष्य उसके ज्ञान से उत्पन्न होकर इस संसार में आता है और यहाँ के अनुभव को प्राप्त कर फिर उसी में लौट जाता है। अतएव यद्यपि सत्ता एक ही है, लेकिन पदार्थों का अस्तित्व उसके मस्तिष्क में जैसे है कि किसी निर्माता के मस्तिष्क में योजनाओं और रूपों का अस्तित्व रहता है। और जब उसके मस्तिष्क में पृष्ठ संख्या 258 वर्तमान है तो यह नहीं कहा जा सकता कि योजनाएं तथा रूप ही निर्माता हैं। यह संसार परमात्मा के मस्तिष्क में वर्तमान था, बिना सोचे समझे इसकी सृष्टि नहीं हुई है। परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की सत्ता दोनों ही अनादि हैं। अतएव हमावुस्त के सिद्धांत को विश्वात्मवाद पैनथिज्म समझना ठीक नहीं। इसी चीज को और भी स्पष्ट करते हुए खाजा खान ने कहा है कि परमात्मा अपने ही ज्ञान के आलोक में प्रकट होता है। जिस प्रकार से एक अंधेरे अजायब घर में गैस की रोशनी जला दी जाए तो उस अजायब घर की प्रत्येक वस्तु एक साथ ही आलोकित हो उठती है, उसी तरह से जब सत्ता ज्ञान से आलोकित हो उठती है तो यह संसार धीरे धीरे विकसित होता हुआ दृश्यमान हुआ। इस ज्ञान के अभाव को उस सत्ता की कमी नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक तरह से वह ज्ञान अपने आप में ही जज्ब हुआ रहता है और कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। और जब वही अपने से अपने को स्वतंत्र कर देता है तब उसके गुण प्रकट होते हैं। पृष्ठ 12। अरबी ने कहा है, अना अना वा अंता अंता, मैं ही हूँ और तू ही है। वह अभिव्यक्त होता है लेकिन वही पदार्थों की जात सत्ता नहीं है, वह शय पदार्थ नहीं है, वह वही है। वही पृष्ठ 18। इंसानुल कामिल के प्रणेता शेख करीमे जीली शुहुदिया शाखा के प्रवर्तक थे। जीली का जन्म सन 1365-66 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1406 ईस्वी से सन 1417 ईस्वी के बीच किसी समय हुई थी। यह दूसरी प्रमुख शाखा है जिसने परमात्मा के संबंध में अपने मत प्रकट किए हैं। ये वहद तुष शुहूत के सिद्धांत को मानते हैं। इनका कहना है कि परमात्मा का स्वरूप जात इतना महान है कि उसके सामने सृष्टि के अन्य पदार्थ नहीं के बराबर हैं। उनके मतानुसार यह जात स्वरूप ही दृश्यमान है और सिफत गुण बराबर अव्यक्त रहती है, जैसे उपकारी में छिपे हुए उपकार नाम के पृष्ठ 259 गुण को कोई देख नहीं सकता और उपकारी ही प्रकट रहता है। पृष्ठ 9। शुहुदिया परमार्थ और अपरमार्थ दो सत्ता मानते हैं। एक परमात्मा की सत्ता है, दूसरी जीव की। परंतु जीव की सत्ता शून्य जैसी है, उसे अपने अस्तित्व के लिए परमार्थ सत्ता क्यों अपेक्षा है? जब गुण सिफत अभिव्यक्त जाहिर होते हैं तब उनको नाम दिए जाते हैं। अतएव ये नाम दर्पण के सदृश हैं जो परम सत्ता के सभी रहस्यों को प्रकट करते हैं। जीली का कहना है, उसकी अभिव्यक्ति संपूर्ण सत्ताओं में अंतर्निहित है और वह सृष्टि के प्रत्येक अणु परमाणु में अपनी पूर्णता को अभिव्यक्त करता है। वह खंडों में विभक्त नहीं है। सृष्टि के संपूर्ण पदार्थ उसकी पूर्णता के कारण हैं और उसके दिए हुए नाम से ही नाम वाले हैं। सृष्टि बर्फ के समान है और तेज स्वरूप परमात्मा जल के समान है जो बर्फ का मूल है। उस जमी हुई वस्तु का नामकरण बर्फ हुआ है, पर जल ही उसका असली नाम है। इंसानुल कामिल जिल्द 1 पृष्ठ 28। सूफी पृष्ठ 143 पर उद्धृत। सृष्टि परमात्मा के गुणों में उसकी परमात्मा की अभिव्यक्ति मात्र है। यह जगत प्रपंच उसकी गुणावली का समाहार है। परमात्मा अपनी सत्ता को अपने गुणों में अभिव्यक्त करता है। इसका मतलब यह है कि वह स्वयं अपने स्वरूप के ज्ञान की उपलब्धि कर रहा है। वास्तव में मनुष्य परमात्मा के नाम और गुण में विश्वास करता है, अतएव मनुष्य के विश्वासों में ही वह अभिव्यक्त होता है। यह विश्वास ज्ञान और चिंता के सहारे ही टिका हुआ है, इसलिए वह ज्ञान के सहारे ही मनुष्य के निकट अभिव्यक्त होता है। परमात्मा की अभिव्यक्ति और सृष्टि प्रक्रिया के संबंध में सूफियों में तनज्जुल का सिद्धांत प्रचलित है। इसके द्वारा उन्होंने यह बतलाने की चेष्टा की है कि किस प्रकार से वह परम सत्ता अपने को अभिव्यक्त करती है। पृष्ठ 260। उसकी जात सत्ता और सिफत गुण तथा सृष्टिकर्ता रब और सृष्टि अब्द में कौन सा संबंध है? इसमें तीन अवस्थाएं बतलाई जाती हैं। प्रथम अवस्था में वह परम सत्ता अल वुजूदुल मुतलक केवल सत्ता अजजात मात्र है। उस अवस्था में वह निर्गुण निरपेक्ष रहती है। वह संपूर्ण रूप से अनभिव्यक्त निर्विशेष और संबंध विहीन रहती है। इस अवस्था के दो रूप हैं, 1 अलयमा, 2 अहदियत। इसमें अलयमा आभ्यंतर रूप है और अहदियत बाह्य रूप। अल अमा से मतलब घनांधकार से है। होने वाली सृष्टि के बीज मात्र रूप में परमात्मा इस अवस्था में रहता है। इसका समर्थन एक हदीस से होता है। अबीदर ने पैगंबर से पूछा कि सृष्टि के पूर्व परमात्मा कहाँ था? मोहम्मद ने जवाब दिया कि वह अलयमा की अवस्था में था, जिसके न ऊपर ही हवा है और न उसके नीचे ही। सूफी पृष्ठ 54 तथा स्टर्त पृष्ठ 41। दूसरा अहदियत बाह्य रूप है। इसमें परमात्मा अपने आप को सर्वातीत सत्ता के रूप में जानता है। इसमें परमात्मा को सब कुछ से परे अपने एकत्व का ज्ञान रहता है। स्टीमी पृष्ठ 94-95। प्रथम अवस्था के बाद की नीचे की दूसरी अवस्था वहदत कहलाती है। इसी अवस्था को हकीकतुल मोहम्मदिया कहते हैं। कहा जाता है कि इस अवस्था में जात सत्ता से भिन्नत्व नहीं होता और न एक दूसरे से ही भिन्नता होती है। इस प्रकार से यह सृष्टि बीज रूप में परमात्मा के ज्ञान में वर्तमान रहती है। इस अवस्था के भी दो रूप हैं। आभ्यंतर रूप हुवियत कहलाता है और बाह्य रूप अनियत। हुवियत से मतलब तत्व है। इसमें शुद्ध सत्ता अनेक विरोधी रूप में ही अपने एकत्व को जानती है और अनियत जो बाह्य रूप है उसमें विशुद्ध सत्ता को एक की अनेक में अभिव्यक्ति का बोध होता है। इस अवस्था में उसे अनेकत्व के मूल में एक के रहने का ज्ञान होता है। वहदत की अवस्था में तत्त्व उस एक से बाहर नहीं है और न इस तत्त्व का बोध कराने वाला पृष्ठ संख्या 261 उससे कोई बाहर है। इस अवस्था में जैसे वह एक अंतर दर्शन करता रहता है और जब इस अवस्था के बाह्य रूप अनियत अहंता में वह जैसे सृष्टि को ध्यान में रखकर अपनी ओर संकेत करता रहता है। इस द्वितीय अवस्था में भी परमात्मा का अनभिव्यक्त रूप ही रहता है लेकिन इसमें जैसे उसे अपने आप का ज्ञान रहता है। वह इस अवस्था में अनभिव्यक्त रहते हुए भी आत्मज्ञ है। तत्त्व वह अनेक का विरोधी एक है और अहंता में अनेक का आश्रय एक है। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट समझ रखना चाहिए कि इस प्रकार से दो रूपों के कहने में द्वैत नहीं है। गुलशनी राज में कहा गया सूफी पृष्ठ 56 है कि उस सृष्टि के कारण स्वरूप परम सत्य में वह मैं और तू एक ही वस्तु हैं। उसका एकत्व विभूतों से परे है। तृतीय अवस्था वाहिदियत है। यह परमात्मा के नाम रूप विशिष्ट जगत प्रपंच में अभिव्यक्त होने की अवस्था है। इस अवस्था में अनेकत्व में एकत्व की अभिव्यक्ति होती है। परमात्मा का ज्ञान सभी पदार्थों में परिव्याप्त हो जाता है। अब स्थूल जगत प्रकाशित होता है। सूक्ष्म अवस्था के बाद सत्ता का स्थूल रूप उद्भासित होता है। जीवन प्रकट होता है। इस प्रकार से प्रथम विशुद्ध स्वरूप मात्र परम सत्ता थी। उस समय परमात्मा निरपेक्ष संबंध विहीन निर्गुण अनभिव्यक्त रहता है। यह अहदियत की अवस्था है। इसके बाद वह आत्मज्ञ होता है और सत्ता प्रकाश और शक्ति का उसे भान होता है। यह वहदत की अवस्था है। और तृतीय अवस्था वाहिदियत में सत्ता जीवन में प्रकाश अहम में तथा शक्ति इरादा इच्छा में परिणत हो जाते हैं। इसके बाद देखने सुनने और बोलने की शक्ति का आविर्भाव होता है। जब सत्ता के विभिन्न गुण जीवन ज्ञान शक्ति इरादा सुनना देखना और बोलना आदि प्रकट होते हैं तब वह लाहूत देवत्व के नाम से अभिहित होता है। और जब उसके गुण क्रियात्मक रूप धारण करते हैं जैसे सृष्टि करना जीवन दान करना मारना तब उसे जबरूत शक्ति पृष्ठ संख्या 262 कहते हैं। जब ये क्रियाशील गुण विभिन्न लोगों में प्रकट हुए तब उन्हीं के अनुरूप उनका नामकरण भी हुआ। जैसे जब ये देवलोक में प्रकट हुए तब वे आलमे मलकूत कहलाए और सदृश रूपों में प्रकट होने के कारण वे आलमे मिसाल कहलाए तथा भौतिक जगत में अनभिव्यक्त होने पर आलमे नासूत। सूफी पृष्ठ 57। सूफियों के 5 जगतों की थोड़ी सी और चर्चा कर लेना अपेक्षित होगा। इन्हें सूफी अवाली में खम्स कहते हैं लेकिन यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि ये 5 जगत अवाली में खम्स 5 स्थान विशेष नहीं हैं बल्कि तनज्जुल अवतरण में अस्तित्व की 5 स्थितियाँ हैं। इन जगतों के प्रकार तथा उनकी संख्या और प्रकृति आदि को लेकर नाना प्रकार का वर्णन उनका नहीं मिलता। एक हदीस में कहा गया है 18,000 जगतों में तुम्हारा जगत एक है। सूफियों ने 5 जगतों की कल्पना संभवतः इसी आधार पर की है। गिब्ब ने 5 जगतों के संबंध में जो लिखा है उसका सारांश इस प्रकार है। ओपो पृष्ठ 54-56। समस्त ब्रह्मांड को परिव्याप्त किए हुए आलमे नासूत है जो सभी पदार्थों का उद्गम है। उसके संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता और उसे 5 जगतों में नहीं गिनते। ये 5 जगत अस्तित्व की विभिन्न 5 स्थितियों के अनुरूप हैं। स्थितियों और जगतों के नाम निम्नलिखित हैं। स्थिति 1 हजरते गैबे मुतलक संपूर्ण अदृश्यावस्था अथवा हजरते अमा अंधकारा छन्नावस्था। जगत 1 आलमे अयाने साबित अपरिवर्तित जगत। 2 गैबे मुजाफ सापेक्षया अदृश्य। 2 आलमे जबरूत ज्ञान विज्ञान और आत्माओं का जगत। 3 आलमे मिसाल सादृश्यावस्था 3 आलम मलकूत देवलोक और कभी कभी इसे आलम बरजख बीच का जगत भी कहते हैं क्योंकि यह चौथे की प्राय सीमा पर है। 4 आलम शहादत दृश्यमान जगत। 4 आलम मुल्क भौतिक जगत। 5 आलम इंसान मानव जगत। 5 यह समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर छिपाए हुए है। इस दृश्यमान भौतिक जगत के द्वारा देवलोक अभिव्यक्त होता है जबकि स्वयं देवलोक द्वारा आलमे जबरूत की अभिव्यक्ति होती है। आलमे अयाने साबित की अभिव्यक्ति आलमे जबरूत द्वारा होती है और आलमे अयाने साबित अपरिवर्तित जगत परमात्मा के नामों और गुणों को प्रकट करने वाला है। नामों और गुणों वाला जगत परमात्मा के एकत्व को अभिव्यक्त करता है। इसमें आलमे मिसाल भावाविष्टावस्था भी है जिसमें आत्मा उस परम सौंदर्य को देखता हुआ बेसुध रहता है। यह स्वप्नावस्था नहीं, वह सोता नहीं है फिर भी जागते रहने पर भी संसार के लिए नहीं के जैसा रहता है। सृष्टि के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करने की इच्छा जब परमात्मा को हुई तब परमात्मा ने अपनी ही ज्योति से एक ज्योति का निर्माण किया। यह ज्योति नूरे मोहम्मद या नूरे अहमद कही जाती है। इस ज्योति को देखकर परमात्मा उस पर मुग्ध हो गया। इसी ज्योति के लिए परमात्मा ने सृष्टि की रचना की। यह ज्योति ही सृष्टि का आदि कारण है। इस ज्योति के द्वारा परमात्मा ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। इस ज्योति से सृष्टि की रचना का क्रम भी बतलाया गया है। जब परमात्मा ने प्रेम भरी दृष्टि से इस ज्योति की ओर देखा तब शर्म के कारण उसे पसीना आ गया। उस पसीने के सूक्ष्म तत्व से परमात्मा ने प्रथम पृष्ठ संख्या 264 आत्मा की रचना की और बाद में इसी प्रकार से निम्न निम्न स्तर के विभिन्न आत्माओं की रचना की। दूसरी बार परमात्मा ने जब फिर उस ज्योति की ओर देखा तो फिर उसे पसीना आ गया और उससे परमात्मा ने शरीर धारण करने वाली दुनिया की सृष्टि की। और जो प्रथम वस्तु निर्मित हुई वह आर्श है। यह आर्श परमात्मा का सिंहासन है और इस आर्श के नीचे परमात्मा ने कुर्सी की सृष्टि की। इस कुर्सी पर परमात्मा के पैर रहते हैं और यह आर्श के नीचे है। ओ पो पृष्ठ 34-35। इस आर्श और कुर्सी की कल्पना जरा कठिन है। इसकी कुछ कल्पना इस बात से हो सकती है कि सूर्य के विशाल आकार की तुलना में मनुष्य का शरीर सूक्ष्माति सूक्ष्म है। अब सूर्य जिस आकाश में है तथा उसके चारों ओर जो आकाश फैला हुआ है उसकी तुलना में उसका अस्तित्व नहीं के बराबर है। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए कुर्सी तक अगर पहुंचा जाए जिस कुर्सी में ये सभी वस्तुएं आ जाती हैं तो यह एक के बाद दूसरे की तुलना कल्पनातीत होती है। और इस कुर्सी की तुलना परमात्मा के आर्श के साथ करना कठिन है क्योंकि कुर्सी तुलना में अत्यंत छोटी साबित होगी। गजाली ने पृष्ठ 167 आत्मा के स्वरूप हकीकते रूहे इंसानी का निरूपण करते हुए उपर्युक्त विवेचना उपस्थित की है जिसे सृष्टि क्रम की विचित्रता का कुछ अनुभव किया जा सकता है। आर्श तथा उसकी ज्योति के नीचे परमात्मा ने एक हरे रंग की पाटिया का निर्माण किया तथा पन्ना एमराल्ड जैसे हरे रंग की कलम बनाई और उसे उजले रंग की ज्योति की स्याही से भर दी और कलम से कहा कि लिख, और कलम ने उस पटिया पर कयामत के दिन तक जो कुछ होगा उसे लिख दिया और सारी पटिया भर गई। कुर्सी के नीचे थोड़ा दाहिनी ओर झुककर उसने उजले मोती के जैसा एक लोक का निर्माण किया जिसमें कमल का गाछ है। इससे ऊपर वाले पृष्ठ संख्या 265 लोक में जाना संभव नहीं। उजले मोती वाला लोक जिब्राइल का आवास स्थान है। इस स्थान पर तूबा वृक्ष की जड़ है। यह तूबा वृक्ष 8 स्वर्गों के 8 भागों में फैला हुआ है। इसकी शाखाएं प्रत्येक स्वर्ग में स्थित भाग में फैली हुई हैं और उन स्वर्गों में रहने वाले व्यक्तियों में प्रत्येक के वास स्थान पर उसकी डाल गई हुई है। तूबा का अर्थ नैसर्गिक आनंद है। ये 8 स्वर्ग एक दूसरे के भीतर हैं और विभिन्न स्तरों में ऊपर की ओर उठते गए हैं। इनमें सबसे ऊंचा और सबसे भीतरी स्वर्ग जन्नते अदन है और इसी जन्नते अदन में स्वर्गीय विभूति की एक झलक पाई जा सकती है। इस विभूति का प्रत्यक्ष करना सभी के भाग्य में नहीं जुटता। साधक अपनी साधना में अग्रसर होता हुआ परमात्मा की कृपा द्वारा ही इस विभूति के दर्शन करने में समर्थ हो पाता है। इन स्वर्गों में वैसे ही लोग वास करते हैं जो भगवत कृपा प्राप्त किए हुए रहते हैं। इन पुण्यात्माओं के लिए स्वर्गों में बड़े बड़े प्रसाद बने हुए हैं और उनमें सुंदर बाग हैं। इन स्वर्गों में नदियां बहती रहती हैं। उनमें 3 मुख्य हैं जिनके नाम कवसर तनसीम और सलसवील हैं। इन नदियों का उद्गम स्थल सबसे ऊंचे स्वर्ग जन्नते अदन में है और वे सबसे नीचे वाले स्वर्ग तक बहती चली जाती हैं। यहाँ के निवासी हूरे गिल में हैं। ये हूरे स्वर्गीय शोभा वाली हैं और सभी प्रकार के गुणों से विभूषित हैं। ये पुण्यात्माओं की दुल्हिने हैं और गिल में सर्वदा एक जैसे बने रहने वाले नौजवान हैं जो इन पुण्यात्माओं की सेवा में लगे रहते हैं। स्वर्ग की देखरेख करने वाला एक देवदूत है जो रिज़्वा कहलाता है। इन स्वर्गों के नाम इस प्रकार से गिनाए गए हैं। सबसे ऊंचा चमकीले मोती वाला स्वर्ग एक जन्नतुल अदन है, और उसके बाद नीचे की ओर के स्वर्ग क्रमशः निम्नलिखित हैं। दो विशुद्ध कस्तूरी वाला स्वर्ग जन्नतुल करार, तीन लाल सुवर्ण वाला स्वर्ग कानन जन्नतुल फिरदौस, चार उजली चांदी वाला आनंद कानन जन्नतुल नईम, पाँच पीछे पीले मूंगे वाला शाश्वत कानन जन्नतुल खुल्द, छः हरे पत्थर वाला आवास कानन जन्नतुल मेव, सात लाल पृष्ठ संख्या 266 रूबी वाला शांति प्रसाद दारुसलाम तथा आठ उजले मोती वाला विभूति प्रसाद दारुल जलाल है। इस क्रम में बहुतों ने कुछ हेर फेर भी किए हैं। आठों स्वर्गों के नीचे छह समुद्र हैं और उनके नीचे सात आसमान। ये सात आसमान एक दूसरे के ऊपर चंदोवे की तरह फैले हुए हैं और कोहकाफ काफ पर्वत की आठ श्रेणियों में जो सात श्रेणियाँ बाहर निकली हुई हैं उन्हीं पर वे आसमान टिके हुए हैं। यह कोहकाफ समस्त पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। सबसे निचले आसमान के नीचे पानी का एक समुद्र है और इसी समुद्र में सूर्य चांद तथा सितारे तैरते फिरते हैं। यह समुद्र हवा पर टिका हुआ है लेकिन उसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरती। इस हवा वाले समुद्र के बीच एक और दूसरा पानी का समुद्र है जो आसमान और पृथ्वी के बीचों बीच है। इसी पानी वाले समुद्र से वर्षा नीचे आती है जिसकी प्रत्येक बूंद के साथ एक देवदूत नीचे आता है और उस बूंद को यथास्थान रख देता है। ये देवदूत प्रकाश से निर्मित अशरीरी हैं, अतएव उनमें आपस में टकराने का प्रश्न ही नहीं उठता। यह समस्त पृथ्वी आठ पर्वतमालाओं से घिरी हुई है। काफ पर्वत की इन आठ श्रेणियों की आठ गोलाइयाँ बन गई हैं जिनसे यह पृथ्वी जो चिपटी है घिरी हुई है। जो सबसे बाहर वाला पर्वत है उसके चारों ओर एक बड़ा सर्प लिपटा हुआ है। इन पर्वत श्रेणियों में एक एक के बाद एक समुद्र है, एक पर्वत श्रेणी के बाद एक समुद्र है, और इस प्रकार से समुद्रों की संख्या सात है जिनसे पृथ्वी घिरी हुई है और वे स्वयं पहाड़ों से घिरे हुए हैं। सबसे भीतर वाला पर्वत सबसे भीतर वाले समुद्र से घिरा हुआ है। इस समुद्र का नाम बहरे मुहित है। प्रत्येक पहाड़ और प्रत्येक समुद्र की चौड़ाई कुछ ऐसी है कि उसे पार करने में 500 वर्षों की यात्रा तय करनी पड़ती है। इस पृथ्वी का बहुत ही कम हिस्सा आबाद है और पहाड़ों तथा समुद्रों के गैर आबाद इलाकों में जिन्न तथा परियों का निवास है। यह पृथ्वी जिस पर मनुष्य वास करता है सबसे ऊपर वाली पृथ्वी है, पृष्ठ संख्या 267। इसके नीचे और छह पृथ्वियां हैं। ये सभी पहले समुद्र में जहाज की तरह तैरती फिरती थी। परमात्मा ने एक देवदूत को इन्हें पकड़कर अपने कंधे पर स्थिर रखने के लिए कहा। उस देवदूत के नीचे परमात्मा ने एक बड़ी सी चट्टान रख दी और उस चट्टान के नीचे एक बहुत बड़ा सांड, इस सांड के नीचे एक बड़ी मछली और उस मछली के नीचे एक महासागर, इस महासागर के नीचे नरक के सात स्तर हैं और इन स्तरों के नीचे एक भयंकर तूफान और उसके नीचे एक अंधकार और उसके भी नीचे एक पर्दा हिजाब और उसके नीचे मनुष्य की बुद्धि की पहुंच नहीं है। गिब हिस्ट्री ऑफ ओटोमन पोइट्री पृष्ठ 34-39 के आधार पर सृष्टि क्रम के संबंध में नाना प्रकार के मत हैं, उन सभी का जिक्र करना यहाँ संभव नहीं है। अतएव ऊपर जिस मत की चर्चा की गई है उसके अलावा सृष्टि क्रम के संबंध में जीली के मत की चर्चा करके ही हमें संतोष करना पड़ेगा। इन दोनों मतों से इसके संबंध में एक धारणा बनाई जा सकती है और कम या बेशी थोड़े से हेर फेर के साथ सूफियों में ये मत मान्य है। इस सृष्टि के निर्माण के पहले अव्यक्त परमात्मा अपने आप में ही था और सभी तत्व उसी में वर्तमान थे। अव्यक्त परमात्मा अल अमा की अवस्था में था और यह संबंध विहीन था। यही हकीकतुल हकायक परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान है और यह सभी बंधनों से परे है। यह हकीकतुल हकायक और हकीकतुल मुहम्मदिया एक ही हैं। एक हदीस में से अल याकूतुल बैजा सफ़ेद याकूत भी कहा गया है। परमात्मा इसी अवस्था में था जबकि यह सृष्टि निर्मित नहीं हुई थी। परमात्मा को सृष्टि रचना की इच्छा हुई तब उसने हकीकतुल मुहम्मदिया पर अपनी पूर्ण दृष्टि डाली। परमात्मा की इस पूर्ण अभिव्यक्ति को बर्दाश्त कर लेना उसकी शक्ति के भी बाहर है, यद्यपि वही हकीकतुल मुहम्मदिया सृष्टि का उद्गम है। इसलिए परमात्मा की दृष्टि पड़ते ही वह गल कर जल हो गया। अब परमात्मा ने पृष्ठ संख्या 268 उसके ऊपर ऐश्वर्यपूर्ण दृष्टि डाली। इस दृष्टि के पड़ने से उसमें तरंगे तथा फेन पैदा हुए। इस फेन से परमात्मा ने सात पृथ्वियां तथा उसके निवासी बनाए। उस जल से जो वाष्प उड़ी उससे परमात्मा ने सात आसमान और प्रत्येक में रहने वाले देवदूतों की सृष्टि की। तब परमात्मा ने उस जल को सात समुद्रों में परिणत कर दिया जो संसार के चतुर्दिक फैले हुए हैं और इसी प्रकार से सृष्टि बनी। स्ट ई मी पृष्ठ 121-122। आदि कारण परमात्मा ने अपने ही अनुरूप आदि भूत की रचना की। यह प्रथम अभिव्यक्ति विशुद्ध ज्ञान है और इसे अकले अव्वल अथवा अकले कुल विश्व ज्ञान कहते हैं। इस विश्व ज्ञान के तीन पहलू हैं। प्रथम हक, जिसके द्वारा वह आदि कारण को जानने में समर्थ होता है। दूसरा नफ्स, इसके फलस्वरूप वह अपने आप को जानता है। और तीसरा मोहताज, जिससे वह जानता है कि उसे परमात्मा का सहारा है, उसे उसी पर निर्भर करना है। कहा जाता है कि एक वस्तु से एक ही वस्तु अभिव्यक्त होती है, इसलिए इन तीनों से क्रमशः फिर तीन चीजें निकलीं। हक से द्वितीय ज्ञान और नफ्स से नफ्से कुल अथवा नफ्से अव्वल विश्वात्मा और मोहताज से विश्व शरीर जिसमें कुल। इसी प्रकार से यह क्रम चलता है और अंत में दसवां ज्ञान नवी आत्मा और चंद्रलोक तक पहुँच जाता है। सप्तग्रहों के संबंध में निम्नलिखित बातें कही जाती हैं। एक, चंद्रलोक। परमात्मा ने इसे अल रूह से बनाया। इसका रंग चांदी से भी उजला है। परमात्मा ने इसे आदम का वास स्थान बनाया। दो, बुध। यह धूसर वर्ण का है और देवदूतों का निवास स्थान है। तीन, शुक्र। यह आलमूल मिसाल का लोक है और पीले रंग का है। इसमें नाना प्रकार के देवदूत हैं जिन्हें नाना प्रकार के काम सौंपे गए हैं। चार, सूर्य। इसका निर्माण कल्ब से हुआ। इसमें इद्रीस, यीशु, सोलो, सोलोमन आदि मसीहों और पैगंबरों का वास है। इसके अधिपति देवदूत इसराफील हैं। पृष्ठ संख्या 269। पाँच, मंगल। इसके अधिपति मृत्यु के देवदूत अज़राइल हैं। यह गाढ़े रक्त वर्ण का है। छः, बृहस्पति। यह नील वर्ण का है। यहाँ के देवदूतों का प्रधान माइकेल है। यहाँ के देवदूत मंगलकारी और करुणामय हैं। इनमें कुछ पशु की आकृति वाले हैं, कुछ चिड़ियों की आकृति वाले और कुछ मनुष्यों के जैसे हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जो आधा भाग और आधा आग और आधा बर्फ के बने हुए हैं। सात, शनि। यह सर्वप्रथम बना था और इसका रंग कृष्ण वर्ण है। मोहम्मद की ज्योति से इसका निर्माण हुआ था। इन सातों के बाद एक आठवां लोक है और वह स्थिर तारा गणों का लोक है। और सबसे बाहर वाला नवा लोक फलकुल अफलाक का है। इसे चरखे आजम भी कहते हैं। यहाँ न तारे हैं न किसी प्रकार के चिन्ह। इन नौ लोकों में प्रत्येक को ज्ञान, आत्मा और शरीर है। अतएव सृष्टि के प्रारंभ से लेकर मानव के आविर्भाव का क्रम कुछ इस प्रकार से समझा जा सकता है। परमात्मा ने जब सृष्टि की इच्छा की तब अपनी ज्योति से नुरूल मोहम्मदिया का निर्माण किया। यह आदिभूत है। इस आदिभूत के साथ परमात्मा का साक्षात संबंध है। यही विश्व ज्ञान है और यही जगत का आदि रूप है। आदिभूत से मौलिक तत्व स्वर्ग, चार तत्व आकाश, तारा आदि का आविर्भाव हुआ। चार तत्व अग्नि, हवा, जल और पृथ्वी सबसे पहले आविर्भूत होने वाले पदार्थ हैं। दृश्यमान जगत में सर्वप्रथम रूप ग्रहण करने वाले यही चार तत्व थे। इनमें सबसे ऊपर अग्नि है, उसके बाद हवा, उसके बाद जल और तब पृथ्वी। ये जैसे एक वृत्त के भीतर दूसरे वृत्त की नाई एक दूसरे के ऊपर क्रम से हैं। इनके भिन्न गुण हैं और उनके कुछ ऐसे भी गुण हैं जो दूसरे तत्व के समान हैं और इन्हीं समान गुणों के कारण एक से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अग्नि सूखी और गर्म है, हवा गर्म और नम, पानी नम और ठंडा तथा पृथ्वी ठंडी और सूखी। इस प्रकार से सारा चक्कर पृष्ठ संख्या 270 पूरा हो जाता है। अग्नि और हवा में समान गुण गर्मी का है, अतएव इस समान गुण के कारण एक का दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। इसी प्रकार से अन्य तत्वों में भी है। यह परिवर्तन सप्तग्रहों के प्रभाव से होता है। इससे धातु, उद्भिद और जीव जंतु का उद्भव होता है। इसलिए सप्तग्रहों को पितृ सप्तक अबा ए सबा कहते हैं और चार तत्वों को मात्र चतुष्टय उम्महते अरबा कहते हैं। सबके अंत में मानव का उद्भव होता है। जीव जंतु की चरम परिणति मानव में जाकर समाप्त हो जाती है।